नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्सव और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही ये विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र स्वदेश लाने के लिए हर संभव सहायता की है। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि की गई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने अकासा एयर और अलायंस एयर की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने दोनों एयरलाइंस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसका उद्देश्य एयरलाइंस को अपने विमानों की संख्या बढ़ाने, संचालन को बेहतर बनाने और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करना था। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप और छोटे उद्यमों की पहचान, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता देना है। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराव ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने वाला उद्यमी बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। सरकार ने गोवा विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। यह कानून कल से लागू हो गया है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि यह कानून अनुसूचित जनजाति समुदाय को लंबे समय से लंबित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सपोर्ट धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। सीबीआई ने 5 और 6 अगस्त के बीच रात में 10 ठिकानों पर छापेमारी की जिसमें मोहाली का एक फर्जी कॉल सेंटर भी शामिल है। भारत सिंगापुर विदेश कार्यालय परामर्श का 19वां दौर नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसमें दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग को प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय के पूर्वी मामलों के सचिव रुतेंद्र टंडन और सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव ल्यूक गोह ने की। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।